हिंदू विवाह के अंतर्गत अगली हेडिंग है हिंदू विवाह के नियम। हिंदू विवाह अनेक धार्मिक आदेशों और निषेधों से संबंध एक जटिल संस्था है। यह विश्वास किया जाता है कि वैदिक काल में विवाह से संबंधित यह मान्यताएं या तो अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी अथवा इनके प्रति व्यक्तियों का दृष्टिकोण अत्यंत उदार था, लेकिन बाद में विवाह से संबंधित ये नियम प्रत्येक स्थिति में व्यवहार का अनिवार्य अंग बन गए। हिंदू विवाह की इन मान्यताओं को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, अंतर्विवाह, ख बहिर्विवाह तथा ग अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह। इन मान्यताओं का संक्षेप में विवेचन कर लेने से हिंदू विवाह की संस्कार में प्रकृति और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। पहली हेडिंग है अंतर्विवाह। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक हिंदू को अपने ही वर्ण में विवाह करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन आज संपूर्ण वर्ण व्यवस्था हजारों जातियों में विभाजित हो जाने के कारण सभी जातियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी ही जाति के अंतर विवाह संबंध स्थापित करें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंतर विवाह का वैवाहिक नियम है जो प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष को अपनी ही जाति अथवा उपजाति में विवाह करने की अनुमति प्रदान करता है। वैदिक और उत्तर वैदिक काल तक अंतर विवाह का क्षेत्र काफी विस्तृत था। कारण यह है कि इस समय तक ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज माना जाता था और केवल शूद्र वर्ण को ही एक पृथक समूह के रूप में देखा जाता था। परिणाम स्वरूप अंतर विवाह का अर्थ द्विज अथवा सवर्णों के अंदर ही जीवन साथी का चुनाव करना था। बाद में जब सभी वर्ण एक दूसरे से पृथक होने लगे तब अंतर विवाह का अर्थ अपने ही वर्ण की स्त्री अथवा पुरुष से विवाह करना हो गया। स्मृति काल के आरंभिक समय से रक्त की विशुद्धता और धार्मिक क्रियाओं की पवित्रता के आधार पर जातियों और उपजातियों का विभाजन आरंभ हो गया और इस प्रकार अंतर विवाह का अर्थ केवल अपनी ही उपजाति में विवाह करने तक सीमित हो गया। धर्मशास्त्र युग तक अंतर विवाह का तात्पर्य केवल अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना ही नहीं बल्कि एक विशेष भाषा भाषी क्षेत्र के अंदर ही अपनी जाति के सदस्यों से विवाह करना समझा जाने लगा। इस प्रकार अधिक स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में अंतर विवाह वह नियम है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को अपने धर्म जाति क्षेत्र और सामाजिक स्थिति के सदस्य के साथ विवाह करने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार व्यवहार में आज अंतर विवाह के पांच स्वरूपों का प्रचलन है। पहला जाति अंतर विवाह, दूसरा धर्म अंतर विवाह, तीसरा क्षेत्र अंतर विवाह, चौथा प्रजाति अंतर विवाह, पांचवा वर्ग अंतर विवाह। विवाह के इस सीमित दायरे को देखते हुए ही केथकर ने बड़े व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा है कि कुछ हिंदू जातियां ऐसी भी हैं जो 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं कर सकती। अंतर विवाह के कारण हेडिंग है आपकी। आरंभ में यद्यपि आर्य और द्रविड़ प्रजाति के बीच रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए अंतर विवाह के नीति का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन बाद में अनेक दूसरे कारणों के आधार पर अंतर विवाह का प्रचलन बढ़ता गया। पहला, सर्वप्रथम जैन और बौद्ध धर्म का विकास अंतर विवाह की नीति को दृढ़ रूप देने का प्रभावशाली कारण सिद्ध हुआ। इन धर्मों का विकास होने से ब्राह्मणों की शक्ति में काफी ह्रास हुआ। ब्राह्मणों की शक्ति में पुनः सुधार होने पर उन्होंने अंतर विवाह के नियम को अत्यधिक कठोर रूप दे दिया जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के दायरे से बाहर न निकल सके। इस प्रकार स्मृति काल से लेकर मध्य काल तक अंतर विवाह का उद्देश्य जाति व्यवस्था के प्रभाव को बनाए रखना था। दूसरा, इसका दूसरा कारण हिंदू समाज पर मुसलमानों का आक्रमण था। मुसलमानों की एक महत्वपूर्ण नीति हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना, हिंदू स्त्रियों से बलपूर्वक विवाह करना तथा हिंदू संस्कृति पर आघात करना था। इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के सामने अंतर विवाह के नियम की अनिवार्यता को स्पष्ट करके उन्हें धर्म परिवर्तन से रोकने का प्रयास किया गया। तीसरा, अंतर विवाह का तीसरा कारण विभिन्न उपजातियों की सांस्कृतिक विभिन्नता थी। प्रत्येक जाति यह अनुभव करने लगे कि उसकी सांस्कृति और धार्मिक विशेषताएं दूसरी जातियों से काफी भिन्न है। इस प्रकार प्रत्येक उपजाति अपने ही सदस्यों से विवाह संबंध स्थापित करने पर बल देने लगे जिससे समूह और परिवार में वे सरलतापूर्वक अनुकूलन कर सके। चौथा, इस नीति का चौथा कारण विभिन्न जातियों का क्षेत्रीय केंद्रीकरण भी था। परिवहन व संचार की सुविधाएं न होने के कारण एक जाति के सदस्य एक क्षेत्र विशेष में ही जीवन व्यतीत करते थे और इस प्रकार अन्य समूहों से संबंध स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। बाद में इसी प्रथा ने धार्मिक रूप ग्रहण कर लिया। पांचवा, अंत में विभिन्न समूहों द्वारा अपने व्यावसायिक ज्ञान की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस नियम को मान्यता दी जाने लगी। विभिन्न जातियां धीरे धीरे यह विश्वास करने लगे कि अंतर विवाह के द्वारा ही वे अपने व्यावसायिक और धार्मिक ज्ञान को दूसरे समूहों अथवा जातियों में जाने से रोक सकते हैं। वास्तविकता यह है कि अंतर विवाह का रूप चाहे कुछ भी हो, इसने सामाजिक प्रगति में गंभीर बाधा उत्पन्न की है। धर्म अंतर विवाह के कारण धार्मिक संकीर्णता में वृद्धि हुई। जाति और प्रजाति अंतर विवाह के फलस्वरूप सामाजिक कार्यक्षेत्र इतना सीमित हो गया कि सभी समूह एक दूसरे से भेदभाव की नीति अपनाने लगे, जबकि क्षेत्र अंतर विवाह के कारण क्षेत्रीय पृथक्करण को अधिक प्रोत्साहन मिला। अंतर विवाह की नीति ने संपूर्ण व्यावसायिक और रचनात्मक कार्य को एक विशेष समूह में केंद्रकृत कर दिया, जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रगति तो रुकी ही, साथ ही साथ समाज विभिन्न समूहों के विशेष ज्ञान से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रह गया। आधुनिक युग में शिक्षा के प्रसार, प्रौद्योगिकीकरण, परिवहन व संचार के साधनों में उन्नति, मूल परिवारों की स्थापना और सामाजिक कानूनों के फलस्वरूप अंतर विवाह के बंधन दुर्बल पड़ते जा रहे और अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी हेडिंग है बहिर्विवाह। हिंदू समाज में एक ओर जहां अंतर विवाह का आदेश दिया गया है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति पर अपने ही गोत्र, प्रवर तथा पिंड के सदस्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस प्रकार पारिभाषिक रूप से कहा जा सकता है कि बहिर्विवाह वह नियम है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी ही जाति के कुछ विशेष समूहों के व्यक्तियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह समूह प्रमुख रूप से गोत्र, प्रवर तथा पिंड हैं। इस प्रकार अपने गोत्र, प्रवर तथा पिंड के व्यक्ति से विवाह संबंध स्थापित न करने का नियम ही बहिर्विवाह है। श्री प्रभु का कथन है कि अपनी उत्पत्ति के समय से लेकर प्रत्येक युग में गोत्र, प्रवर और पिंड की धारणा से संबंधित बहिर्विवाह के नियमों में इतना परिवर्तन, संशोधन और रूपांतरण हुआ है कि इनके मौलिक अर्थों को समझना लगभग असंभव सा हो गया है। इस जटिलता के बीच भी निम्नांकित विवेचन में हमें बहिर्विवाह के विभिन्न आधारों तथा स्वरूपों का उल्लेख करके इसकी प्रकृति को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला है गोत्र बहिर्विवाह। सगोत्र बहिर्विवाह का अर्थ है अपने गोत्र के बाहर विवाह संबंध स्थापित करना। ऋग्वेद में गोत्र शब्द की व्याख्या से तीन चार संभावित अर्थ निकलते हैं, जैसे गोशाला, गाय का समूह, पहाड़ अथवा क्रिया आदि। इससे स्पष्ट होता है कि आरंभ में एक घेरे के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को ही एक गोत्र का सदस्य माना जाता होगा। धीरे धीरे एक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति में विश्वास करने वाले सभी व्यक्ति अपने को एक गोत्र का सदस्य मानने लगे। एक पूर्वज से संबंधित होने के कारण विश्वास किया जाने लगा कि एक गोत्र के स्त्री पुरुषों का रक्त समान होने के कारण वे आपस में भाई बहन हैं और इसलिए उनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते। यदि गोत्र के सदस्यों में रक्त संबंध की धारणा काल्पनिक भी हो तो इतना निश्चित है कि एक स्थान पर रहने के कारण एक गोत्र के सभी स्त्री पुरुषों के बीच नैतिक संबंध बने रहना आवश्यक समझा गया होगा। इस प्रकार गोत्र के सदस्यों के बीच संबंधों की आशंका को दूर करने के लिए सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगा दिए गए। श्री कपाड़िया ने ऐसे अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जिनसे पता चलता है कि वैदिक काल में सगोत्र विवाह पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं थे। उदाहरण के लिए इस काल में स्वयंवर और गांधर्व विवाहों का काफी प्रचलन था जिसमें गोत्र संबंधी प्रतिबंधों का बना रहना संभव नहीं था। धर्मशास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि कलयुग में द्विजों को सगोत्र विवाह से बचना चाहिए। यह कथन स्पष्ट करता है कि उस समय यह प्रतिबंध व्यवहारिक रूप में विद्यमान नहीं रहे होंगे। कापड़िया का कथन है किरान में जहाँ से आर्य भारत में आए सगोत्र विवाह पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। डॉक्टर अलतेकर का यह भी मत है कि ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व तक भारत में सगोत्र विवाह पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। अधिक संभावना इस बात की है कि मनु और उनके समकालीन स्मृतिकारों ने ही सबसे पहले सगोत्र विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाने आरंभ किए। बौधायन का तो यहाँ तक कथन है कि अज्ञान वश भी यदि कोई व्यक्ति सगोत्र कन्या से विवाह कर ले तो बाद में उसका पालन माता पिता के समान करना चाहिए। विज्ञानेश्वर का कथन है कि वास्तविक गोत्र केवल ब्राह्मणों के होते हैं, क्षत्रिय और वैश्यों के गोत्र उनके पुरोहितों के नाम पर आधारित होते हैं, जबकि शूद्रों का कोई गोत्र नहीं होता। इससे भी स्पष्ट होता है कि गोत्र की धारणा एक सामान्य पूर्वज अथवा रक्त संबंधों पर आधारित नहीं है। इसके पश्चात भी आज लगभग सभी उपजातियां किसी न किसी पूर्वज के आधार पर अपना एक पृथक गोत्र होने का दावा करते हैं। यदि अपने नए विवाह कानूनों के द्वारा सगोत्र विवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन व्यवहार में आज भी सभी हिंदू सगोत्र विवाह बहिर्विवाह के नियम का पालन करना आवश्यक समझते हैं। बहिर्विवाह के अंतर्गत दूसरी हेडिंग है प्रवर बहिर्विवाह। कापड़िया का मत है कि प्रवर कुछ संस्कारों और ज्ञान से संबंधित एक संप्रदाय की ओर संकेत करता है, जिससे कि एक व्यक्ति संबद्ध होता है। वैदिक इंडेक्स के अनुसार प्रवर का अर्थ आवाहन करना है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रवर का संबंध किसी प्रकार के रक्त संबंध से न होकर एक आध्यात्मिक संबंध से है। श्री प्रभु का विचार है कि प्राचीन समय में यज्ञ के अत्यधिक महत्व होने के कारण अग्नि प्रज्वलित करते समय व्यक्ति अपने श्रेष्ठ ऋषियों के नाम का उच्चारण करते थे। इस प्रकार समान पूर्वज अथवा समान ऋषि के नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने को एक ही प्रवर से संबंध मानने लगे। बाद में प्रवर की धारणा सामाजिक महत्व की बन गई और इसलिए अनेक संस्कारों में भी, जिसमें विवाह संस्कार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, प्रवर की धारणा को महत्व दिया जाने लगा। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह नियम बना दिया गया कि कोई भी पुरुष उस स्त्री से विवाह नहीं करेगा जो उसी के प्रवर से संबंध हो। श्री पीपी काणे का विचार है कि सब प्रवर विवाह पर प्रतिबंध तीसरी शताब्दी से आरंभ हुए और नवीं शताब्दी के बाद तो सब प्रवर विवाह करना अक्षम्य सामाजिक अपराध समझा जाने लगा। वर्तमान युग में यज्ञ आदि का प्रचलन बहुत कम हो जाने के कारण प्रवर जैसी किसी धारणा का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा भी सप्रवर विवाह पर लगे प्रतिबंध को अपूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। बहिर्विवाह के अंतर्गत तीसरी हेडिंग है सपिंड बहिर्विवाह। सपिंड बहिर्विवाह के नियम को समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि पिंड के अर्थ को समझ लिया जाए। पिंड शब्द की व्याख्या मिताक्षरा और दया भाग के नियमों के अनुसार पृथक पृथक रूप से की जाती रही है। मिताक्षरा के प्रवर्तक विज्ञानेश्वर के अनुसार पिंड का अर्थ समान रक्त कणों से है, अर्थात जिन व्यक्तियों में एक ही पूर्वज का रक्त विद्यमान होने की संभावना की जाती है वे सपिंड हैं। इस दृष्टिकोण से एक ही पिंड के स्त्री पुरुष आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। दाय भाग के प्रवर्तक जीमूतवाहन के अनुसार पिंड का अर्थ उन चावल के गोलों से है जो श्राद्ध के समय पितृव्यों को अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार जितने भी व्यक्ति एक ही पूर्वज को चावल के गोले अर्पित करते हैं वे सपिंड हैं और इसलिए उनकी संतानों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते। मिताक्षरा की धारणा से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल पिता पक्ष के सदस्य ही सपिंड नहीं होते बल्कि मातृपक्ष के संबंधी भी सपिंड होते हैं, क्योंकि बच्चे में माता और पिता दोनों का रक्त विद्यमान होता है। इस प्रकार सपिंड बहिर्विवाह के सामान्य नियम के अनुसार पितृपक्ष की ओर 7 पीढ़ी तथा मातृपक्ष की ओर 5 पीढ़ियों के सदस्यों तक के विवाह को वर्जित माना गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत काल तक सपिंड विवाह पर कोई कठोर प्रतिबंध नहीं था। इसका प्रमाण यह है कि श्री कृष्ण, अर्जुन और अभिमन्यु जैसे सामाजिक व्यवस्था के पोषक व्यक्तियों ने अपने मामा की पुत्रियों से विवाह किया था। आज भी दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में बहन की लड़की से विवाह करने का प्रचलन पाया जाता है। इसके उपरांत भी यह कहना उचित होगा कि महाभारत काल के पश्चात से सपिंड विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाने लगे। वर्तमान स्थिति यह है कि अधिकांश हिंदू सपिंड बहिर्विवाह को गोत्र बहिर्विवाह से भी अधिक मान्यता देते हैं और इसी नियम के आधार पर बहुत से व्यक्ति केवल अपने ही गोत्र में नहीं बल्कि माता के गोत्र में भी विवाह संबंध स्थापित नहीं करते। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी माता और पिता की 3-3 पीढ़ियों तक सपिंड विवाह के प्रतिबंध को मान्यता दी गई है। यदि किसी समूह की प्रथा अथवा परंपरा इसे निषिद्ध मानती हो, यह वैधानिक मान्यता सपिंड बहिर्विवाह के व्यापक प्रभाव को स्पष्ट कर देती है। बहिर्विवाह के उपयुक्त स्वरूप के अतिरिक्त कुछ हिंदू जनजातियों में टोटम बहिर्विवाह का भी प्रचलन पाया जाता है। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति एक टोटम में विश्वास करते हैं वे आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं करते। कुछ अधिक रूढ़िवादी हिंदू दिशा बहिर्विवाह में भी विश्वास करते हैं, अर्थात जिस दिशा में उनकी पुत्री का विवाह होगा उस दिशा के किसी कन्या को वे अपने घर में नहीं लाते। ऐसे विश्वास की रूढ़िवादी प्रवृत्ति का विस्तार मात्र जिनका उल्लेख किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। बहिर्विवाह के लाभ हेडिंग है विभिन्न समूहों को एक दूसरे के संपर्क में लाने तथा सांस्कृतिक एकता में वृद्धि करने के क्षेत्र में बहिर्विवाह का एक महत्वपूर्ण नियम सिद्ध हुआ है। पहला, सर्वप्रथम जैविकीय दृष्टिकोण से बहिर्विवाह एक उत्तम व्यवस्था है जिसके द्वारा उत्तम संतान के जन्म की अधिक संभावना रहती। अनेक जीवशास्त्री भी इस तथ्य में विश्वास करते हैं कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह होने से बच्चे में शारीरिक दोष आ जाने की संभावना रहती है, जबकि बहिर्विवाह के फलस्वरूप स्वस्थ बुद्धिमान और सुंदर संतानों का जन्म होता है। दूसरा, बहिर्विवाह के परिणाम स्वरूप विभिन्न समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और इस प्रकार उनके बीच संघर्ष की संभावना बहुत कम हो जाती है। तीसरा, समूह में नैतिकता बनाए रखने के लिए भी यह नियम महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। यदि रक्त संबंधियों के बीच ही विवाह करने की छूट दे दी जाए तो परिवार तक में अनैतिकता और अनाचार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहिर्विवाह का नियम इस शंका को समाप्त कर देता है। श्री काणे का कथन है कि बहिर्विवाह के द्वारा एक पीढ़ी को अपने शारीरिक दोष दूर करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा रक्त के संयोग सदैव नए रूप ग्रहण करते रहते हैं। इसी आधार पर समनर का कथन है कि अंतर विवाह रूढ़िवादी है जबकि बहिर्विवाह प्रगतिवादी। इसका तात्पर्य है कि अंतर विवाह की मान्यता कुछ विशेष स्वार्थों का ही परिणाम है जबकि बहिर्विवाह समाज के लिए वास्तविक रूप से उपयोगी है। हेडिंग, बहिर्विवाह से हानियां। यद्यपि जैविकीय और नैतिक रूप से बहिर्विवाह को उचित समझा जाता है, लेकिन विवाह की इस मान्यता ने अनेक सामाजिक समस्याओं को भी जन्म दिया है। बहिर्विवाह के कारण विवाह का क्षेत्र व्यापक होने के स्थान पर बहुत सीमित रह गया है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से कोई व्यक्ति माता की ओर 5 पीढ़ियों और पिता की ओर 7 पीढ़ियों तक ही नहीं बल्कि कितने भी दूर के संबंधियों से विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता। इससे उचित जीवन साथी के चुनाव में बाधा पहुंचती है। वास्तविकता तो यह है कि विवाह का यही प्रतिबंध बहुत बड़ी सीमा तक बेमेल विवाह और दहेज प्रथा जैसी समस्या का मुख्य कारण है। तीसरी हेडिंग है अनुलोम तथा प्रतिलोम। हिंदू विवाह की मान्यताओं में अनुलोम और प्रतिलोम का नियम इतना महत्वपूर्ण है कि केवल एक इसी नियम के आधार पर भारत में उच्च जातियों की श्रेष्ठता को इतने लंबे समय तक बनाए रखा जा सका है। अनुलोम वह नियम है जिसके द्वारा एक पुरुष को अपनी सामाजिक स्थिति के बराबर अथवा उससे निम्न स्थिति की स्त्री से ही विवाह करने की अनुमति प्राप्त होती है। यदि वर की अपेक्षा कन्या की जात की सामाजिक स्थिति उच्च हो तब ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है और ऐसे विवाहों पर स्मृति काल के पहले से ही कठोर नियंत्रण लगाए जाते रहे हैं। वैदिक काल और उसके काफी बाद तक अनुलोम के नियम का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक था। इस समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन होने के कारण अनुलोम का अर्थ पुरुष का अपने तथा अपने से निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह करने से समझा जाता था। स्वयं मनुस्मृति में भी यह उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण अपने तथा अपने से निम्न 3 वर्णों, क्षत्रिय अपने से निम्न 2 वर्णों और वैश्य अपने से निम्न शूद्र कन्या से ही विवाह कर सकता है। इसके उपरांत भी मनुस्मृति में पाणिग्रहण संस्कार की अनुमति केवल सवर्ण विवाह के लिए ही दी गई है। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि जो द्विज सवर्ण स्त्री के स्थान पर अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है वह संतान और वंश सहित शीघ्र ही शूद्र हो जाता है। मनुस्मृति में सभी निम्न जातियों के निर्माण की प्रक्रिया को भी प्रतिलोम विवाह का ही परिणाम माना गया है। यह कहा गया है कि क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मणी से उत्पन्न संतान सूत होती है, वैश्य से क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न संतान मागध और वैश्य से ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न संतान वैदेह होती है। इसी प्रकार यदि एक शूद्र पुरुष से वैश्य क्षत्रिय या ब्राह्मण स्त्री संतान को जन्म दे देती है तो ऐसी संतान को क्रमशः छत्ता, अधम तथा चंडाल कहा जाता है। इसके पश्चात यह वर्ण संकर संतानें यदि पुनः सवर्ण स्त्री के संतान को जन्म दे दें तो इस प्रकार उत्पन्न संतानें स्वपाक होती हैं। तात्पर्य है कि मनुस्मृति के अनुसार अस्पृश्य कही जाने वाली जातियां प्रतिलोम विवाहों का ही परिणाम है। वास्तविकता यह है कि अनुलोम का नियम आरंभ में काफी उदार था, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म का ह्रास होने के बाद चारों वर्ण क्रमशः हजारों जातियों में विभाजित हो गए। रक्त की शुद्धता और धार्मिक पवित्रता के आधार पर इन सभी जातियों को भी एक दूसरे की तुलना में उच्च और निम्न समझा जाने लगा। इस आधार पर अनुलोम का नियम विभिन्न वर्णों से संबंधित न रहकर सभी जातियों और उपजातियों की उच्चता और निम्नता की धारणा से संबंध हो गया। यहीं से अनुलोम विवाह का नियम कुलीन विवाह की मान्यता में बदल गया। अनुलोम की वर्तमान धारणा के अनुसार एक ही जाति के अंदर अनेक उच्च और निम्न समझी जाने वाली उपजातियों के सदस्यों को विवाह की अनुमति किस प्रकार दी जाती है। इसको अनुलोम विवाह का नियम बताता है कि चौथे स्तर के वंश अथवा जात की स्त्री का विवाह पुरुष वर्ग में सर्वोच्च दूसरे, तीसरे अथवा चौथे किसी भी स्तर के पुरुष से हो सकता है। क्योंकि ऐसा होने से पुरुष की सामाजिक स्थिति अपनी पत्नी की सामाजिक स्थिति से नीची नहीं हो सकती। इसी प्रकार तीसरे स्तर के स्त्री का विवाह केवल तीसरे, दूसरे और सर्वोच्च स्तर के पुरुष से हो सकता है। दूसरे स्तर की स्त्री केवल दूसरे तथा सर्वोच्च स्तर के पुरुष से विवाह कर सकती है, जबकि सर्वोच्च स्तर की स्त्री का विवाह केवल सर्वोच्च स्तर के पुरुष से ही होगा। इस प्रकार पुरुष वर्ग में विवाह के सबसे अधिक अवसर सर्वोच्च जाति अथवा कुल के पुरुष को प्राप्त होंगे, जबकि स्त्री वर्ग में विवाह के सर्वाधिक अवसर चौथे स्तर की स्त्री को मिलेंगे। इस प्रकार अनुलोम विवाह का नियम इस धारणा पर आधारित है कि किसी भी स्थिति में लड़के की जातिगत स्थिति अपनी पत्नी की स्थिति से नीची नहीं होनी चाहिए। अनुलोम का उपयुक्त नियम एक सिद्धांत मात्र है। व्यवहार में आज प्रत्येक पुरुष अपनी ही जाति की स्त्री से विवाह संबंध स्थापित करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है कि इस प्रवृत्ति का प्रारंभ संभवतः 10वीं शताब्दी के बाद से आरंभ हुआ। इसके पश्चात जब कभी उच्च जाति की स्त्री का विवाह अपने से निम्न स्थिति की जाति से पुरुष से किया गया, तब ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा गया। प्रतिलोम विवाह का पर समाज में कठोर नियंत्रण लगाए गए और धर्मशास्त्रों में यहाँ तक कह दिया गया कि प्रतिलोम विवाह जिसमें पत्नी की जाति पति की जाति से उच्च होती है के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतानों को कोई भी जाति प्राप्त नहीं होती, बल्कि वे चंडाल अथवा निषाद हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि आरंभ में अनुलोम का नियम आर्यों ने इसलिए बनाया था कि जिससे आर्य स्त्रियों का त्रिवेण पुरुषों से विवाह न हो सके, लेकिन बाद में रक्त की पवित्रता की धारणा इतनी रूढ़िगत होती गई कि द्विजों अर्थात ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों के अंदर बनने वाले विभिन्न जातियां भी अनेक उच्च और निम्न जातियों में विभाजित हो गई और मनुस्मृति को एकमात्र हिंदू धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। इसी कारण सभी जातियां अनुलोम विवाह के एक आवश्यक नियम के रूप में देखने लगी। हेडिंग है अनुलोम विवाह से हानियां। विवाह के क्षेत्र में अनुलोम के नियम ने अनेक गंभीर सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। पहला, इसके फलस्वरूप उच्च जातियों में लड़कों की मांग अधिक हो जाने के कारण दहेज प्रथा का प्रचलन हुआ और जो बाद में एक संक्रामक रोग की तरह सभी जातियों में फैल गया। दूसरा, निम्न जातियों में लड़कियों की मांग बढ़ने के कारण कन्या मूल्य की प्रथा विकसित हो गई जो अनेक निम्न जातियों में आज तक विद्यमान है। कुछ विद्वान यहाँ तक विश्वास करते हैं कि भारत में मुसलमानों का एक बड़ा भाग यहाँ के निम्न जातियों के मिश्रण से ही बना है और किसी कारण मुसलमानों में महर जो मदक की प्राचीन परंपरा के रूप में एक तरह का कन्या मूल्य ही है कि प्रथा को इतना अस्थायी रूप प्राप्त हो सका। तीसरा, अनुलोम नियम के कारण उच्च जातियों में लड़कों की मांग बढ़ने के कारण बहुपत्नी प्रथा का जन्म हुआ और बंगाल के कुछ कुलीन परिवारों में तो पुरुष 20 पत्नी रखने लगे। चौथा, अनुलोम नियम का कालांतर में इतना रूढ़िवादी हो गया कि लड़की के लिए उच्च जाति का वर न मिलने पर लड़की का विवाह उच्च जाति के किसी वृद्ध से कर देना भी उचित समझा जाने लगा। इससे बेमेल विवाहों की संख्या में इस सीमा तक वृद्धि हुई कि कभी कभी एक पुरुष की पत्नी की आयु उसकी पुत्री की आयु से भी कम देखने को मिलने लगे। पांचवा, स्वाभाविक है कि इस स्थिति ने बाल विधवाओं की समस्या को एक गंभीर रूप दे दिया। छठा, अनुलोम विवाह के अंतर्गत कुलीनता की भावना के कारण माता पिता शीघ्र अपने विवाह अपने बच्चों का विवाह करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होने का प्रयत्न करने लगे। इसके फलस्वरूप बाल विवाह की समस्या सामने आई। सातवां, विवाह के इस नियम ने रूढ़िवादिता में इतनी वृद्धि कर दी कि व्यक्ति के पास सामाजिक समस्याओं और कर्मकांडों के अतिरिक्त कुछ नहीं रह गया। यह स्थिति हमारे सांस्कृतिक पतन का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुई। अगली हेडिंग है हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन। हिंदू विवाह की संरचना और परंपरागत नियमों में भी परिवर्तन की प्रक्रिया अब तेज हो चली है। वास्तविकता तो यह है कि अन्य सभी संस्थाओं के समान हिंदू विवाह के आदर्शों और मान्यताओं में भी समय समय पर परिवर्तन लाने के प्रयत्न किए जाते रहे हैं, लेकिन जैसा कि पाणिक्कर का कथन है कि सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार जब कभी भी विधान सुधारने की चेष्टा की गई, वे संस्थाएं तथा रूढ़ियां और दृढ़ हो चली जिन्हें प्राचीनतम स्मृतिकारों का आशीर्वाद प्राप्त था। इस प्रकार जो संस्थाएं स्मृतिकारों की छाप लेकर चली आ रहे थी तथा प्राचीन काल से फल फूल रहे थे, उसमें देशाचार या कुलाचार के अनुसार कुछ संशोधन भले ही होते रहे हों, उनमें अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सका। आज हम संक्रमण के स्तर से गुजर रहे हैं जिसमें पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव और व्यक्तिवादी धारणाओं के कारण शास्त्रीय विधि विधानों के पुनरीक्षण सरलीकरण और सुधार पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके फलस्वरूप न केवल विवाह से संबंधित मान्यताओं में परिवर्तन हुआ है बल्कि नवीन अधिनियमों के द्वारा इन परिवर्तनों को कानूनी रूप देने की भी व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रकार विवाह से संबंधित परिवर्तनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, वर्तमान काल में विवाह का धार्मिक पक्ष निरंतर कमजोर पड़ता जा रहा है। विवाह के पीछे आज अधिकांश व्यक्तियों का दृष्टिकोण धार्मिक दायित्वों की पूर्ति करना न होकर काम और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो गया है। सामाजिक जीवन में श्राद्ध, तर्पण और यज्ञों के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति आ जाने से पुत्र जन्म को विवाह का अंतिम लक्ष्य नहीं माना जाता। अविवाहित स्त्री पुरुषों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो परंपरागत धार्मिक आदर्शों के बिल्कुल भी प्रतिकूल है। दूसरा, विवाह की मान्यताएं बदल जाने के कारण इसके संस्थात्मक रूप में भी परिवर्तन हुआ है। बहुत से व्यक्ति आज सगोत्र और सप्रवर विवाह के प्रतिबंध में कोई विश्वास नहीं करते। शिक्षा और तार्किक जीवन में वृद्धि होने के कारण धीरे धीरे जागरूक व्यक्ति इन मान्यताओं की पोल को समझते जा रहे हैं। तीसरा, आज अनुलोम और प्रतिलोम का भेद तेजी से समाप्त हो रहा है। विभिन्न वर्णों के व्यक्तियों के बीच ही अब विवाह संबंधों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही, बल्कि एक वर्ण के अंतर्गत बनी विभिन्न जातियों के बीच भी ऊंच नीच का संस्तर टूटता जा रहा है। चौथा, सन 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के कारण अब तक उच्च जातियों के वे वैवाहिक विशेषाधिकार समाप्त हो गए हैं जिनकी सहायता से भारत में बहुपत्नी विवाह को बहुत प्रोत्साहन मिला था। एक विवाह के प्रचलन के कारण अब हिंदू दाम्पत्य जीवन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक संतुलित बन सकता है। पांचवा, समाज और परिवार में विधवाओं को नवीन अधिकार मिल जाने के कारण उनके द्वारा पुनर्विवाह करना अनुचित नहीं समझा जाता। इससे विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों की स्वतंत्र इच्छा का महत्व निरंतर बढ़ता जाता है। छठा, रोमांस और शिक्षा में निरंतर वृद्धि होने के कारण अंतरजातीय विवाहों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे न केवल वैवाहिक मान्यताएं बदल गई हैं, बल्कि पारिवारिक आदर्शों में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। सातवां, आज सभी व्यक्तियों को कानून के द्वारा विवाह विच्छेदन का अधिकार मिल जाने के कारण विवाह को एक अटूट और अविच्छिन्न संबंध नहीं कहा जा सकता। इसके फलस्वरूप उस धार्मिक विश्वास की नींव हिल उठी है जिसके अनुसार पति पत्नी के संबंध को जन्म जन्मांतर की धारणा से संबंधित किया जाता था। आठवां, आज कोई विवेकशील व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करता कि कन्या का विवाह 4-5 वर्ष की आयु में कर देने से ही धर्म का पालन संभव है, अथवा यह कि उच्च कुल के वृद्ध व्यक्ति से भी कन्या का विवाह करना एक धार्मिक कृत्य है। नवीन विचारों के फलस्वरूप आज विलंब विवाह को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, बल्कि विवाह में लड़की की स्वतंत्र इच्छा का भी अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा है। नौवां, वर्तमान समय में विवाह का रूप भी व्यावसायिक आधार ग्रहण कर रहा है, जिससे विज्ञापनों के द्वारा वधू के गुणों की रूपरेखा पहले ही निश्चित करके प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जीवन साथी का चुनाव होता है। विवाह में यह समझौतावादी प्रवृत्ति की चरम अभिव्यक्ति है। उपर्युक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप चाहे हिंदू विवाह से संबंधित अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है। व्यक्तिवादिता और मानसिक तनाव से संबंधित कुछ नवीन समस्याएं भी सामने आई हैं। हिंदू विवाह के स्वरूप में भी अभी कितना परिवर्तन होगा यह बताना कठिन है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि विचारों में होने वाले तीव्र परिवर्तनों के कारण विवाह के आदर्श धार्मिक पक्ष से हटकर व्यावसायिक और सुविधावादी पक्ष से निरंतर अधिक संबंध होते जाएंगे। इस प्रकार आपका हिंदू विवाह यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।